नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार से 3 दिवसीय यात्रा पर जोहानसबर्ग में हैं। ये शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया जा रहा है। यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6ठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA के नेताओं की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी बाद में साथी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और G20 सम्मेलन के अंतिम दिन तीसरे सत्र को संबोधित करेंगे। आज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाईची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने की योजना है। जोहानसबर्ग से असुनियो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने भारत के लिए जोहानसबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का महत्व रेखांकित किया है। कल जोहानसबर्ग में एक विशेष प्रेस वार्ता में श्री दलेला ने कहा कि एकजुटता, समानता और स्थिरता के व्यापक विषय के अंतर्गत इस वर्ष के G20 ने दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता द्वारा चिन्हित 4 प्रमुख प्राथमिकताओं पर एक सशक्त संदेश दिया है।
इस वर्ष G20 ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 4 विशेष प्राथमिकताओं पर एक मजबूत संदेश दिया है। इनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता और प्रतिक्रिया को मजबूत करना, निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए धन जुटाना शामिल है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष से संबंधित मौजूदा घटनाक्रम पर उनकी जानकारी की सराहना की। उन्होंने संघर्ष के शीघ्र समाप्त होने और स्थायी शांति की स्थापना के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इसराइल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय को शीघ्र लाभ मिल सके। श्री गोयल ने कहा कि बहुत संभव है कि वे मुक्त व्यापार समझौते के पहले चरण की घोषणा कर दें ताकि इसके लाभ तेजी से मिलना शुरू हो सके।
मुझे लगता है कि ये एक नए व्यापारिक संबंधों के दौर की शुरुआत। अब तो पहले तय करना होगा कि दोनों देशों को क्या मिल सकता है, इस FTA में से कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या चीजों पे हम सहूलियत देंगे, चीजें अभी चर्चा में से निकलेंगी।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज 4था दिन है। इस मंच पर फिल्म निर्माता, रचनाकार और सिने प्रेमी कहानियों, जुनून तथा अविस्मरणीय पलों को साझा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म निर्माताओं को सुझाव दिया है कि वे जम्मू कश्मीर में फिल्म बनाने की संभावनाओं का लाभ उठाएं। इसे दुनिया की सबसे शानदार जगहों में से एक बताते हुए अनुपम खेर ने निर्देशकों और निर्माताओं से घाटी की समृद्ध संस्कृति, दिलचस्प कहानियों और सिनेमाई नजारों को दिखाने की अपील की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व का स्मरणोत्सव आज से श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती पर 3 दिवसीय समारोह के रूप में शुरू हो गया है। देश विदेश से श्रद्धालु ऐतिहासिक समारोहों में प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के रक्षक तथा करुणा, त्याग और साहस के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला SBI दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम किया। इस नए वैश्विक खिताब को जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली टीम बन गई है। भारत के लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य सेन ने आज फाइनल मुकाबले में जापान के योशी तनाका को हराकर इस वर्ष का अपना पहला खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।